मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 17 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं शशिकांत, आप हैं आगरा उत्तर प्रदेश से, और नंदन कुमार, आप हैं किशनगंज बिहार से। तो शशि और नंदन, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक छोटी सी सूचना है, और सूचना यह कि कल YouTube पर AFEIS ने मेरा एक प्रोग्राम डाला है जिसका संबंध इस बात से है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तैयारी कैसे करनी चाहिए। आप जानते हैं कि सिविल सर्विस मेंस का जो सेकेंड पेपर है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, जुडिशरी, इन सब के बारे में पूछा जाता है, उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इंटरनेशनल रिलेशन। और उसका जो सिलेबस है, हालांकि अपेक्षाकृत मैं समझता हूं कि थोड़े विस्तार से तो जरूर बताया गया है, लेकिन बिटवीन द लाइन्स की स्थिति बहुत सारी उसमें है, उसको बहुत खोल करके आपके सामने नहीं रखा गया है। मैंने इस वीडियो प्रोग्राम में उनकी डिटेल्स आपको बताई हैं, और इस पर इनफैक्ट मैंने काफी काम किया, काफी मेहनत की, और वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन मेरा बहुत प्रिय विषय है भी, तो मैंने बहुत डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश की है कि आपको किन किन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मेरा यकीन है, अब आने वाला वक्त ही मेरे इस यकीन की परीक्षा करके मुझे बताएगा कि यदि आप इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका उत्तर लिखने में आप अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। तो मित्रों, जो भी स्टूडेंट थोड़े सीरियस तरीके से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और इनफैक्ट सही मायने में सफल होना चाहते हैं, उन्हें मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को, वीडियो प्रोग्राम को YouTube पर जरूर देखें। हो सकता है कि आप इन सब के बारे में जानते भी हों, लेकिन इससे एक बात तो होगी कि आप जो जान रहे हैं उस पर आपका भरोसा और ज्यादा बढ़ जाएगा, या ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ आपको ऐड करने के लिए मिल जाए, तो यह अब आप तो आपके ऊपर है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन यह सूचना मुझे आपको देनी थी ताकि कम से कम मैं अपने दायित्व को तो पूरा कर सकूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए उससे पहले थोड़ी सी हम दूसरी खबरों को देख लेते हैं। ब्रेग्जिट की बात मैंने कल आपसे थोड़ी सी की थी। ब्रेग्जिट मतलब आप ये कह लीजिए कि बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी घटना ये विश्व की थी। और आप देखिए कि जनता ने कहा कि हम यूरोपीय संघ से अलग होना चाहते हैं, और संसद ने कह दिया कि नहीं, हम अलग होना नहीं चाहते। ब्रेग्जिट पर मतदान हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि मतदान होना है, और उस मतदान में ज्यादातर सांसदों ने, जो कि अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहा कि नहीं, ब्रेग्जिट हमें नहीं चाहिए, यानी कि हम यूरोपीय संघ से अलग होना नहीं चाहते हैं। देखिए, यहां पर एक बात आपको अखबारों में पढ़ने को मिलेगी कि ये जो प्रस्ताव था कि हम ब्रेग्जिट से अलग होंगे, इस सत्तारूढ़ पार्टी ने रखा था, है ना, जो सरकार शासन में थी उसने रखा था, उसका यह प्रस्ताव गिर गया, राइट, सरकार के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव गिर गया। इसका मतलब हुआ कि सरकार के प्रति अविश्वास घोषित हो गया, आधे से अधिक लोग उसके साथ नहीं है, राइट। अब स्वाभाविक है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, ये इससे सिद्ध होता है, लेकिन वहां जो सिस्टम है, आप देखिए कि फिर तुरंत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव, कि बट नेचुरल कि अब तो सरकार के पास विश्वास रही नहीं कि आधे से अधिक सदस्य नहीं है, लेकिन वह अविश्वास प्रस्ताव नहीं गिरा और सरकार बच गई, यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कह लीजिए, और सरकार बच गई। अब आप देखिए कि यहां आपको दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी, इसका इस्तेमाल आप भारतीय संविधान के तहत भी कर सकते हैं, कि वहां के सांसदों को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कितनी छूट है अपनी बात कहने की, कि वो सरकार में है, सरकार के द्वारा कोई प्रस्ताव संसद में पेश किया गया है, लेकिन अपने ही सरकार के द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के विरोध में वो मतदान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, तभी तो प्रस्ताव गिरा। लेकिन जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो वो सब एकजुट होकर के सरकार के साथ हो गए, तो सरकार गिरने से बच गई। यह है सांसदों को दी गई मत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे यहां ये चीज व्हीप के जरिए कंट्रोल कर ली जाती है। व्हीप शब्द आप सुनते हैं जिसकी चर्चा मैंने की है। व्हीप का मतलब है कि सभी सदस्य उस दिन सदन में उपस्थित रहेंगे और साथ ही सरकार जो चाहती है उसी के पक्ष में मतदान करेंगे। ये हमारे यहां की व्यवस्था है। ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में तो आप बकायदे पता भी लगा सकते हैं ओपनली कि किसने किसको किसके पक्ष में मत दिया है। तो वो ये वहां की प्रणाली है जो वहां के सांसदों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। ब्रेग्जिट पर अब हम देखते हैं मित्रों कि कई विकल्प अखबारों में आज दिए हैं कि अब क्या क्या हो सकता है, उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। क्या घटना किस रूप में आगे बढ़ती है, उसका फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्व होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। एक न्यूज में आपने सुना जो सम्मेलन हो रहा सूक्ष्म सिंचाई योजना को लेकर के, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। मित्रों ये आपके सिलेबस का जो जनरल स्टडीज मेंस का थर्ड पेपर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखते हैं ना कि थर्ड पेपर में ही इकोनॉमी पर प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर पार्ट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर प्रश्न भी पूछे गए हैं, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। और भारत के लिए अब इस सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, सूक्ष्म सिंचाई का मतलब ही है कि हम कम से कम पानी का इस्तेमाल करके फसल उगाएं। इसके तहत दो प्रणालियां सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। एक है स्प्रिंकलर, जिसमें कि घूम घूम करके एक पाइप हल्के हल्के फव्वारे जैसे छोड़ता रहता है और उस क्षेत्र में सिंचाई होती रहती है। आप लोगों ने कहीं ये शायद प्रणाली देखी भी होगी। और दूसरी है टपक सिंचाई, ड्रॉप ड्रॉप करके पानी एक एक बूंद जड़ों पर टपकता है। जितनी पानी की जरूरत होती है उतना पानी उन जड़ों को मिल जाता है। और इस प्रणाली को विकसित करने वाला दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र रहा है वह है इजराइल, जिसके बारे में बीच बीच में हम लोगों ने काफी बातें की हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने बाकायदे नारा दिया है कि वन ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि पानी की एक एक बूंद से ज्यादा क्रॉप पैदा करें। तो इस तरीके से जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, प्लीज इस पर आप तैयारी कर लें। मुझे ये टॉपिक महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। फ्रेंड्स, न्यूज में तो नहीं है लेकिन न्यूज़पेपर में आपको एक तथ्य और पढ़ने को मिला होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के चयन को लेकर। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, देखिए डायरेक्टर जनरल पद कई होते हैं। डायरेक्टर जनरल पता लगा कि वो कंप्यूटर हैं, डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर हैं, डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम है। इस तरह से डायरेक्टर जनरल शब्द आपको कई मिलेंगे, एक ही राज्य में कई डायरेक्टर जनरल होते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है वो एक ही होता है। उसका पूरा का पूरा जो डेजिग्नेशन होता है वह होता है DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राइट। जो स्थिति आप यूं कह लीजिए, मोटे तौर पर इस शब्द पर मैं जोर देना चाहूंगा, हमारे चीफ सेक्रेटरी की होती है। अब चीफ सेक्रेटरी तो सभी का हेड हो जाते हैं ना, सभी पूरे प्रशासन के, लगभग वही स्थिति आप यूं कह लीजिए कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की होती है। बस फर्क इतना ही कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केवल पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं और जो चीफ सेक्रेटरी है वो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुलिस का प्रमुख होता है, सबसे प्रमुख व्यक्ति। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में जो सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर्स होंगे कुछ, उनमें से ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चयन किया जाता है। इसके बारे में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे गाइडेंस दिया था, गाइड किया था, कुछ उन्होंने पॉइंट्स भी बताए थे सात सूत्री के, आप पुलिस में सुधार कीजिए। भारत में लगातार पुलिस प्रणाली में सुधार करने की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, सरकार ने बीच में इसका मसौदा भी बनाया लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो सका है। थोड़े बहुत ऊपरी सुधार कर दिए जाते हैं, मूलभूत सुधार कुछ नहीं कर पाए हैं। और आप लगातार महसूस कर रहे होंगे कि जब भी पुलिस प्रणाली में सुधार की बात आती है कोई लेख ऐसा मिलता है, मैं हमेशा आप लोगों को प्रोवाइड भी करता हूं। कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसमें ये छूट की मांग की थी कि भाई हम सबके यहां अपनी अपनी स्थितियां होती हैं, तो प्लीज आपने जो निर्देश दिए हैं उस निर्देशों को हटा दिया जाए और हमें इस बात की स्वतंत्रता दी जाए कि डायरेक्टर जनरल आप पुलिस का चयन हम खुद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके चयन के दायरे को सीमित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, जो यूपीएससी है, जो आपके सिविल सर्विस की परीक्षा लेती है, वह बकायदे एक पैनल तैयार करेगी, जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो पैनल बनाएगी और वो पैनल आपके पास भेज देगी। उस पैनल में से आप देखिए कि किसका चयन कर सकते आप करना चाहेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मान लीजिए चार नाम उन्होंने भेजे, तीन नाम भेजे, उसमें से एक आप चुन लीजिए बस, लेकिन चुनना होगा आपको उन तीन चार नामों में से ही। इसमें छूट चाह रही थी राजनीतिक पार्टियां, सरकारें, राज्य सरकारें कह लीजिए, ताकि वो उन पैनल से बाहर के भी ऑफिसर की चयन का चयन कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है, क्योंकि देखिए अब समझ की बात है, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उसके अपनी पसंद का व्यक्ति हो। पसंद का व्यक्ति क्यों हो आप जानते हैं, ताकि वो पुलिस में राजनीतिक दखलंदाजी कर सके। उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था। अभी उनकी याचिका को पर सुनवाई करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज रखा है, बोले नहीं आपको पैनल से ही उनका चयन करना होगा। चूंकि ये सिविल सर्विस से संबंधित मामला था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, और खासकर अभी जो इंटरव्यूज होने वाले हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, उन स्टूडेंट के लिए तो यह सूचना बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट में जो टॉपिक डाला गया है वो है किसानों के रोजगार में विविधता लाई जाए। किसानों की समस्याओं को आप देख रहे हैं, किसान लगातार खेती का काम छोड़ रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, यानी कि खेती का काम उनके लिए लाभ का सौदा नहीं रह गया। तो अगर खेती के काम के साथ कुछ और चीजें जोड़ दी जाएं तो फिर वो खेती के काम में लगे रहेंगे, क्योंकि उनकी टोटल आय बढ़ जाएगी। इसको आधार बनाकर के ये आर्टिकल लिखा गया है और इसे लिखा है वरुण गांधी जी ने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठीक है, वरुण गांधी मेनका गांधी जी के पुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन आप उन्हें राजनेता के रूप में मत देखिए। मैंने इनके आर्टिकल्स पढ़े हैं, ये बेसिकली बहुत एकेडमिक किस्म के आर्टिकल लिखते हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखते हैं। अभी भारत के जो गांव हैं उनके ऊपर भी इनकी बहुत अच्छी किताब आई है। तो वरुण गांधी जी के अगर आपको लेख पढ़ने को मिलते हैं तो बेहतर है कि आप उन्हें पढ़ें और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको लगते हैं उन्हें नोट भी करते जाएं, राइट। फ्रेंड्स, आइए अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय मैंने जो ये चुना है उसके फ्रेंड्स दो कारण है। पहला तो यह है कि जब आप अपना सिविल सर्विस के अनसर्व पेपर उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि हमेशा हर साल एजुकेशन पर कोई ना कोई प्रश्न आता ही है, एक प्रश्न आता ही है। हाँ, ये बात अलग है कि वो प्राइमरी एजुकेशन पर है या हायर एजुकेशन पर है या फिर सीधे सीधे आईटी पर है, लेकिन एजुकेशन पर होता जरूर है। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। चुनने का दूसरा कारण यह है कि एक संगठन है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एक संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आती है जिसे कहा जाता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, हिंदी में इसका नाम है असर। उसने भारतीय एजुकेशन पर, यह प्राइमरी एजुकेशन पर रिपोर्ट देती है, उस पर अपनी रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं उस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने आंकड़ों की भाषा में बात की है और रिपोर्ट इस तरह से होती भी है। उस पर मैं आपको बकायदे दो एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सब आप अपने अपने ढंग से देख लेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन की हालत है बहुत अधिक बुरी है। मतलब पांचवीं तक स्टूडेंट पहुंच चुका है लेकिन वो दूसरी की किताबें नहीं पढ़ पा रहा है। मैथमेटिक्स का ज्ञान लगभग लगभग शून्य सा है। मतलब 16-17 साल की उम्र हो गई है लेकिन जो बहुत ही मूलभूत गणित होते हैं उनको भी वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। विज्ञान की जानकारी तो बहुत ही ज्यादा पुअर है, यानी कि हमारे प्राइमरी एजुकेशन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जबकि हम बकायदे इसको लेकर के 2010 में शिक्षा का अधिकार पारित कर चुके हैं। अब होता यह है कि जब शिक्षा का अधिकार पारित कर दिया गया है तो अब राज्य चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा दी जाए, तो जब वो क्वांटिटी पर आते हैं तो क्वालिटी पुअर होती चली जा रही है और अभी की स्थिति बिल्कुल वही हो गई है। फिर बाद में एक संकट यह भी आया कि सरकार ने बकायदे नियम बना दिया कि नहीं, आठवीं तक आप किसी को फेल ही नहीं करेंगे। जब आपने कह दिया कि आप फेल ही नहीं कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि आप उनको अगली क्लास में भेजते चले जाइए, अगले क्लास में भेजते चले जाइए। और अब जब वो आठवीं तक पहुंच गए हैं तो पता लगा कि कुछ भी करने लायक नहीं है, लेकिन वो आठवीं तक पहुंच गए हैं। इनफैक्ट सच पूछिए तो भारतीय शिक्षा पद्धति को लेकर के लगातार प्रश्न खड़े किए जाते रहे हैं। आप देखते हैं कि पूरी तरह से रटंत विद्या बन चुकी है। आप रटिए, हमारे जो क्वेश्चंस पूछने के जो तरीके हैं वो इतने सरल से हो गए हैं, या कह लीजिए इतने स्ट्रेट हो गए हैं कि उसमें आपको अपने दिमाग के इस्तेमाल करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। और इसका जो बहुत ही ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, जो बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वह पड़ रहा है उच्च शिक्षा पर। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ प्रश्न इन एडिटोरियल कमेंट्स में रेज भी किए गए हैं। मैं आपको तीन एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल कमेंट है उसे आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और उसमें उन्होंने दो तीन पॉइंट्स और उठाए हैं, जैसे कि अभी जो आपके रिजर्वेशन का पॉइंट है वो उन्होंने उठाया है, प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूशन का प्रश्न उन्होंने उठाया है। तो इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स इन एडिटोरियल कमेंट्स से नोट कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। जहां तक ईमेल का सवाल है, सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सुनील कुमार रैदास खड़गपुर पश्चिम बंगाल से, सचिन गुप्ता नवाबगंज उत्तर प्रदेश से, किरण साहनी, पूजा सिंह, प्रेम कुमार गोपालगंज बिहार से, प्रवीण सिंह और शिवम बदायूं उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।